ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
வைசஹே ஜானரூப ஜோ நவுகா ஹே உஸ்கா மார்க் கவுன் ஹே, तो बता रहे यहां मार्ग है, दो बता रहे, सत्संग और सर्वत्याग। ये सत्संग और सर्वत्याग है, ये दो मार्ग में ये नौका चलती है। सत्संग का मतलब है संग तो हर एक व्यक्ति करते हैं, कौन नहीं करते हैं। जागृत में भी संग करते हैं हम लोग, स्वप्न में भी संग करते हैं, सुषुप्ति में भी संग करते हैं। किसी के मन में शंका हो सकती है, महाराज जागृत में तो ठीक है संग करते हैं, स्वप्न में भी करते, सुषुप्ति में कहां कर रहे संग? सुषुप्ति में भी करते हैं। जागृत में हम अधिक से अधिक जो संग कर रहे दृश्य के साथ, दृश्य पदार्थ के साथ संग कर रहे, इसलिए दुखी। स्वप्न में भी देखे संग हो रहे अधिक से अधिक दृश्य के साथ, तभी हाथी घोड़े सब देख रहे, उसे कभी आनंदित भी हो रहे, कभी दुखी भी हो रहे। सुषुप्ति में हम संग करते हैं दृष्टा के साथ, अपना जो दृष्ट स्वरूप है उसके साथ संग हो रहे हैं। तो इसलिए वहां जागृत और स्वप्न के अपेक्षा अधिक सुख है, किंतु दृष्ट के साथ संग करने पर भी बीच में एक व्यवधान पड़ा है, वहां पर्दे के समान माया, वो पूर्ण रूप से संग करने नहीं दे रहे। इसलिए संग तो कर रहे हम, जागृत में भी कर रहे, स्वप्न में भी कर रहे, किंतु दृश्य के साथ बाहुल्य है, और सुषुप्ति में संग कर रहे अपना स्वरूप के साथ। तो संग तो करते हैं, इसलिए यहां बता रहे सत्संग, सत के साथ संग। सत के साथ संग अभी भी है, उसके साथ संग नहीं हो ही नहीं सकता है, व्यापक तत्व है। वो दिन भी मैंने बताया था, हमारा जो मन है विषयाकार जो बनता है वो तो आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। और हमारा जो मन है स्वाभाविक संग है उस परमात्मा के साथ, ये स्वाभाविक है, विषयों के साथ स्वाभाविक नहीं है। ये कैसा? जैसा घड़े के अंदर जो आकाश है, जल आपको भरना पड़ता है, स्वाभाविक नहीं है। प्रयत्न करके घड़े के अंदर आपको जल डालना पड़ेगा, किंतु घड़े के अंदर आकाश क्या आपने घुसर दिया उसमें? वो स्वाभाविक है। वैसे ही यहां घड़े के समान हमारा मन है, अंतकरण है, उस घड़े के अंदर आकाश के समान है परमात्मा, उसको आपने और मैंने घुसड़ा नहीं, वो स्वाभाविक है। किंतु हम लोगों ने प्रयत्न किया, जो जैसा भार के जल के समान विषय को उसमें घुसर दिया, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और परमात्मा के लिए कोई प्रयत्न नहीं, वो स्वाभाविक है। तो संग हम कर रहे सदा, कि जागृत में विषयों के साथ हम संग कर रहे, तभी परमात्मा के साथ संग नहीं हो रहे क्या? तभी भी है, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को देख रहे, जमीन के ऊपर बैठे हैं सत्संग में, दरी के ऊपर बैठा है कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम देख रहे, क्या दबी दबी दरी को नहीं देखा है क्या? पहले आप दरी को देखते हैं, तभी बैठे हुआ व्यक्ति को हम देखते हैं, किंतु हमारी दृष्टि है बैठे हुए में प्रधान जाती है, अधिष्ठान को भूल जाते हैं। जब तक अधिष्ठान को ज्ञान के बिना आपको अध्यास का ज्ञान तीनों कालों में नहीं होगा। ये नियम है, तो भी अधिष्ठान को भूल गए और अध्यास पदार्थ को हम लोगों ने प्रधानता बना दिया। जैसा बाजार में जाते हैं माई लोग साड़ी खरीद करने के लिए, कभी कभी उस साड़ी का रंग से इतना ही आकर्षित होते हैं और धागे को भूल जाते, धागा अच्छा है खराब है कोई मतलब नहीं, साड़ी का रंग अच्छा है, क्योंकि रंग में प्रधानता आ गई। किंतु आप रंग देख रहे हैं साड़ी का, तभी भी आप धागे को देख रहे, देखने पर भी भूल गए। वैसे ही जागृत में भी हम उस अपना स्वरूप के साथ संग कर रहे, तभी जाके उसमें आरोपित दृश्य पदार्थ के साथ संग कर रहे और प्रधानता दिया आरोपित पदार्थों को। पहले भी एक दिन बताया था मैंने, जिसके सामर्थ्य से हम देख रहे, जिसके सामर्थ्य से हम बोल रहे, जिसके सामर्थ्य से हम परिचय दे रहे, किंतु जिसके सामर्थ्य से बोल रहे उसको भूल गए और ये शरीर का परिचय दे रहे उसको प्रधानता मान लिया। मैं विद्वान हूं, मैं डॉक्टर, उसमें प्रधानता। जिसके सामर्थ्य से जो परिचय दे रहे दृष्टा, उसको भूल गया। इसलिए संग हम जागृत में भी उसके साथ कर रहे, क्योंकि उसके बिना चलेगा ही नहीं, कहां नहीं है वो, सर्वत्र है। तभी हम बोलते घट घट वासी, सर्वत्र व्यापक है। जागृत में भी उसके साथ संग कर रहे, किंतु हमारा जो विचार है उसमें ना जाते हुए अध्यारोपित पदार्थ के ऊपर हमारी दृष्टि टिक गई और हम मानते हैं विषयों के साथ संग कर रहे करके। वैसे ही स्वप्न में भी हम संग कर रहे उसी के साथ, किंतु विवेक नहीं है इसलिए हम प्रदक नहीं कर सकते हैं उसको, तो विचार के द्वारा ही उसको अलग किया जाता। इसलिए यहां भगवान भाष्यकार ने एक विशेषण लगाया, सत्संग, सत लगा दिया है। तो सत का मतलब क्या है, किसको सत कहते हैं? अवस्थत्रयाबाध्यत्वम कालत्रयाबाध्यत्वम असत्यत्वम। बहुत लोग कहते हैं, वेदांति के ऊपर आक्षेप करते हैं, अरे जो जगत को मिथ्या कहते हैं, जगत तो मिथ्या है, किंतु जगत दिख रहे मिथ्या कैसा होगा? क्या मिथ्या देखने के लिए क्या कोई विरोध है क्या? मिथ्या होने मात्र से नहीं दिखेगा ऐसा कोई कहां भी नहीं कहा दिया है। मिथ्या पदार्थ नहीं दिखता है ऐसा किसी शास्त्र में नहीं कहा है। तो इसलिए जगत को भी सत्य मानते हैं बहुत। एक था एक व्यक्ति हमारे से बोलते, जगत सत्य है मिथ्या कैसा बोलते? मैंने कहा ठीक है मान दे दो, किंतु हरेक एक लक्षण होता है, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि, आपने प्रतिज्ञा करने मात्र से नहीं होगा। यदि कोई कहे मैं आकाश में मकान बना रहा हूं, ठीक है आपको बताना पड़ेगा कैसा बनाएंगे। तो हमने कहा ठीक है जगत आपका सत्य मान लीजिए, मैं आपको लक्षण बता रहे, अवस्थत्रय अबाध्यत्व अथवा कालत्रय अबाध्यत्व। अवस्थत्रय मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्था में जिसका बाद ना हो सत्य है। जिसमें घटाना हो आप घटा दीजिए, यदि जगत में घट रहे हो तो घटाओ। क्या जगत में घट रहे क्या? जागृत में आप देख रहे हो स्वप्न में नहीं है, बाद हो गया वहां, और स्वप्न में देख रहे हो सुषुप्ति में नहीं तो बाद हो रहे, तो आपका लक्षण वहां नहीं घट रहे। तो जागृत का स्वप्न में बाद हो रहे, स्वप्न का जागृत में बाद हो रहे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में बाद हो रहे, कहां आपका लक्षण घट रहे सत्यत्व, किंतु आपका जो लक्षण है वो दृष्टा में घट रहे। जागृत को देखने वाले ही आप है, स्वप्न को भी प्रकाशित करने वाले देखने वाले आप है, और सुषुप्ति को आपने ही देखा था, तभी उठने के बाद बोलते हैं सुख पूर्वक मैंने सोया था। सुषुप्ति में भी आपको अनुभव हुआ है, किंतु अनुभव होने पर भी आप वहां बता नहीं सकते। होना अलग है, प्रकट करना अलग है। क्यों बता नहीं सकते? जागृत में आप कोई अनुभव कर रहे हैं, आप दूसरे को बता सकते हैं, सुषुप्ति में क्यों नहीं बता सकते? वहां भी बताना चाहिए। वहां इसलिए आप नहीं बता सकते हैं, बताने का साधन है, इंद्रिय आपके पास नहीं उस समय में। अनुभव है आपका, दूसरे को प्रकट करने के लिए इंद्रिया चाहिए। जैसा कोई मान लीजिए स्नान करने गए गंगा जी में, आप किसी का गला पकड़ के दबा दिया जल में कुछ समय तक, और अंदर से वो घुटन जैसा अनुभव कर रहे किंतु बोल नहीं सकता वो, और ऊपर आने के बाद बोलते हैं अरे आप तो मुझे मारने वाले थे, मैं भी मरने वाला था, वहां अनुभव किया था, यहां के बता रहे। इसलिए अनुभव करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया विवरण प्रमेय में, उस अनुभव आप दूसरे को बताने के लिए इंद्रिय चाहिए। गूंगा को आपने गुड़ खिला दिया, क्या उसको मीठा लगा है क्या नहीं, और उससे पूछिए, वो बता नहीं सकता। इसका मतलब उसको मीठा नहीं लगा होगा, अवश्य उसको भी मीठा लगा, किंतु वो जो मिठास का अनुभव वह दूसरे को नहीं बता सकता है, बताने वाले वागिंद्रिया नहीं। वैसे ही सुषुप्ति में भी अनुभव कर रहे हम लोग सब, उसके लिए प्रमाण क्या है? जागृत में आके स्मरण हो रहे, एक नियम है या स्मृति सा अनुभव पूर्विका। जो भी हम स्मरण कर रहे वो जो स्मरण है उसके पूर्व में अनुभव आवश्यक है। इसलिए नियम है पहले अनुभव होता है, अनुभव होने के बाद अनुभव ज्यादा समय नहीं रहता है, थोड़े समय में समाप्त होता है, और वो अनुभव एक संस्कार को छोड़ देता है, और वो संस्कार क्या करता है, आपको स्मरण करवाता है। इसलिए संस्कार जन्य ज्ञानम स्मृति, संस्कार से जो जन्य ज्ञान है इसको स्मरण कहते हैं। ये संस्कार किससे आया? अनुभव से। अनुभव जन्य ज्ञानम संस्कार है, संस्कार से जन्य ज्ञान है स्मृति मानी जाती। तो जागृत में हम बोल रहे सुखपूर्वक सोए थे, ये स्मरण है। अभी सुखपूर्वक सोए थे, आनंदपूर्वक सोए थे, ये जो स्मरण हो रहे ये अनुभव आपने कहां किया? कहां तो कहां अनुभव किया होगा, ये सुषुप्ति में अनुभव किया था। वहां क्यों नहीं बता सके? इंद्रिया नहीं है, इंद्रियों के अभाव में आप नहीं बता सकते। इसलिए संग हम जागृत में भी कर रहे, स्वप्न में भी कर रहे, सुषुप्ति में भी कर रहे। ये जो परमात्मा के साथ संग है स्वाभाविक, अभी बताया मैं, विषयों के साथ है अस्वाभाविक है। जैसा घट के अंदर जल डालना अपना प्रयत्न के द्वारा, घट के अंदर जो आकाश हम और आपने नहीं घुसा दिया, स्वाभाविक है। किंतु संग करने पर भी ये जो अध्यास पदार्थ है उसमें हमारी दृष्टि अधिक गई, इसलिए हम बताए सत्संग, ये मार्ग है। सत का मतलब त्रिकालाबाध्य अथवा अवस्थ त्रय में जो बाध ना हो, वो एक ही तत्व है, आत्मा एवं इदमग्रे आशीष जो बताया था वही आत्मा है। वो आत्मा कोई बाहर नहीं है, सबके अंदर है, दूर नहीं है, समीप में है। हम बोलते हैं आपने मुझे दुख पहुंचा दिया, हाथ इधर लगाते हैं, मेरा आत्मा को आपने चोट पहुंचा दिया करके सब लोग बोलते हैं, अज्ञानी भी बोलते हैं, आत्मा को चोट पहुंचा दिया करके। तो इसलिए जो सत्संग सत परमात्मा के साथ संग है, ये ज्ञान रूप नौका चलने का मार्ग है। और दृश्य के साथ हमारा संग होता है उसको दुस्संग कहते हैं। जो दुस्सह है इसलिए है, आप दुख के ओर ले जाते हैं, और दुस्संग है आपको भोग देता है, सत्संग आपको योग देता है। इसलिए हम बता रहे हैं सत्संग है ये मार्ग है, और बता रहा दूसरा है सर्वत्यागा, ये दो मार्ग है। ये ज्ञान रूप नव का चलने के लिए सत्संग और सर्वत्यागा, ये दो मार्ग है। सर्वत्यागा मतलब जिसमें हम लोगों ने आसक्ति रखी है। त्यागने का मतलब दो होता है, एक अपने विषय को त्याग दिया, एक विषय में आसक्ति को त्याग दिया। विषयों को त्यागना प्रधान नहीं है, ये भी आवश्यक है। विषय के साथ साथ यदि आप आसक्ति त्याग दिया, वही वास्तव में त्याग माना जाता है। विषय ही बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण है आसक्ति। आप उस विषय के प्रति आसक्ति है, लगाव, ये बंधन का कारण। पहले भी एक बार बताया था, संसार में कितने लोग मर रहे हैं, क्या कभी दुख होता है हमारा? ना सोचते भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी विषय है, हमारे घर में है वो भी विषय है। एक में दुख हो रहे और एक में क्यों नहीं हो रहे? कारण ये है, उसमें आसक्ति नहीं है, इसमें आसक्ति है। तो इसलिए आसक्ति का जो त्याग है वही मुख्य रूप से त्याग है। तो इसलिए यहां बता रहे जो सर्वत्याग, यही क्या है मार्ग है, वो ज्ञान रूप नौका का। और उसका तट कौन है? मोक्ष ही जिसका तट है। ये संसार रूप सागर का खूब वर्णन किया, ऐसा संसार रूप सागर है उसका तट है मोक्ष, तभी जाके वहां हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हम भगवान भाष्यकार बता रहे हैं ऐसे संसार सागर में ये पतित हो गए देवता। और उसके बाद उस पिंड जो परमात्मा ने है क्षुधा और प्यास के द्वारा संयुक्त किया संसार सागर में डालने के बाद, तो भूख और प्यास से युक्त किया, वो जो मूल पिंड था विराट को उत्पन्न किया था, तो उस विराट के साथ भूख और प्यास का संबंध जोड़ दिया, इसलिए उनके ही संतान आज हम भी भूख और प्यास से तड़पते। संसार में सारे जो भी करते हैं पाप किसके लिए? बस ये भूख को लेकर, केवल पेट की भूख बुझाने के लिए क्या क्या नहीं करते। ये सबसे बड़े अपराध किया भगवान ने, भूख ना दे तो कोई भी चिंता ही नहीं थी। तो इसलिए यहां बता रहे भूख और प्यास के द्वारा जोड़ दिया, तभी उस विराट में अभिमान करने वाले सारे इंद्रियों ने भी सोचा हम भी भूखे हैं। जैसा मान दीजिए किसी का जो अंगी है अवयवी भूखा होने पर अवयव भी अनुभव करते हैं, जैसा आपका दर्द हो रहे पैर में तो पूरा शरीर में अनुभव हो रहे, वैसे ही अग्नि आदि देवता है विराट के अंग है, तो विराट को भूख लगने से सारे अग्नि आदि भी भूखे रहे। जैसा हम सिर दर्द हो रहे अथवा आंख दर्द हो रहे, अब दवा खा रहे मुंह से खा रहे, और दर्द ठीक हो रहे आंख के, मतलब ये अंग और अंग के संबंध होते हैं। पेड़ में आप जल दे रहे, नीचे जड़ में पत्ते हरे भरे हो रहे, पत्ते के ऊपर आपने तो जल नहीं डाला, कारण है ये जो अंगी और अंग के साथ संबंध है। इसलिए जो विराट भूखा होने के कारण और विराट के अंगभूत सारे अग्नि आदि भूखे रहे। बाद में उस अग्नि आदि देवतों ने प्रार्थना किया, भगवान हम तो भूखे हैं और हम लोगों के लिए रहने के लिए स्थान दे दो और उसमें रहकर हम भोग कर सकते हैं। तो परमात्मा ने उनकी जो प्रार्थना सुना, सुनने के बाद वहां अलग अलग आकृति उनके सामने लाते, भिन्न भिन्न आकृति। सबसे पहले गाय को लाया, अर्थात यहां वेष्टि सृष्टि बता रहे, अभी तक समष्टि सृष्टि होने के बाद ये जो वेष्टि है हम लोगों की सृष्टि बता रहे। उन देवताओं की प्रार्थना सुन लिया, चाप रो मत, गिरगिड़ाओ मत, ठीक है आप लोगों को व्यवस्था बनाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने देवतों के लिए गौ लेके आया। देवतों ने कहा ये तो ठीक नहीं है हम लोगों के लिए। और उसके बाद अश्व लाया, उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं है। ऐसा करते करते जितने भी जो प्राणी हैं संसार में सब लेके आ गए। देवतों ने मना किया, इसमें रहकर हम ठीक ठीक से भोग नहीं कर सकते। अंतिम में पुरुष मानायक, ये पुरुष का अर्थात मनुष्य को लाया सामने। सारे देवता प्रसन्न हो गए, ये तो बहुत सुंदर है, सुकृतम इदम सुकृतम बत्तेति, ये बहुत अच्छा है। तभी परमात्मा ने कहा ठीक अच्छी बात है, इनमें प्रवेश कर दीजिए। अर्थात जो इंद्रिय है देवता है प्रत्येक प्रवेश किया। विराट के जो इंद्रिय के अभिमानी थे देवता, अग्नि जाके नेत्र वाणी में प्रवेश हो गया, सूर्य है नेत्र में प्रवेश हुआ, सारे प्रवेश हो गए। इस प्रकार ये मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ बता दिया। क्यों बता दिया? परमात्मा ने तो सब सृष्टि किया तो भी परम मनुष्य को क्यों श्रेष्ठ बता दिया? कारण इसलिए है, सबके अंदर जो तत्व है एक तत्व है, सूत्रे मणिगणा इव, सभी के अंदर रहने पर भी मनुष्य उस तत्व को जान सकते हैं, उस आत्म तत्व को जान सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं जान सकते हैं। वो आत्म तत्व और कोई है ही नहीं, सभी का अधिष्ठान, उत्पत्ति स्थिति लय का अधिष्ठान भूत जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है। वो जो प्रज्ञान है सभी में है और हमारे अंदर भी है, इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, इसमें महावाक्य बता दिया। उस प्रज्ञान रूप महाब्रह्म ही मैं हूं, इस प्रकार यदि अनुभव करता है तभी सबसे पहले मैं उपोद्घात में बताया था, सारा संसार का कारण है अविद्या, जो मूल अविद्या है वो नष्ट होती है। अर्थात प्रज्ञान ब्रह्म मैं हूं ये ज्ञान हो गया। अविद्या नष्ट होने से उस अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ अविवेक समाप्त होता है। अविवेक नष्ट होने से हमारे अंदर जो अभिमान हो रहा था वो समाप्त हो गया, और अभिमान समाप्त होने से राग द्वेष समाप्त हो गया, और राग द्वेष समाप्त होने से जो कर्म कर रहे वो भी समाप्त हो गया, और कर्म से प्राप्त जो शरीर भी नहीं है तो शरीर भी नहीं है, आत्मा जो दुखी हो रहा था वो भी समाप्त हो गया। तो पूरा सार ये निकल गया, ये दुख का कारण है मूल अविद्या, उस अविद्या का नाशक है प्रज्ञानम ब्रह्म, इसको ये बता रहे श्रुति। इस तत्व को हम लोग जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। है हमारे अंदर विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा निरंतर उसका अनुसंधान करते हुए उस तत्व को जान करके उस अज्ञान को निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना, तभी हमारा जन्म सफल है। भोग तो जन्म जन्मांतर में हम करते आए, कभी संतुष्ट नहीं हुए, न होगे न होने वाले। जहां जाके हम सदा के लिए संतोष हो सकते हैं, जिस आनंद में स्थित हो सकते हैं, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब लोग सत्संग सुन रहे, बहुत अच्छी बात है। जो श्रवण कर रहे, उसके बाद जितना समय मिला है उसका भी अनुसंधान करते करते ये जो मिला हुआ जीवन को सार्थक करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करने से क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। पुरुषार्थ करते हुए प्रारब्ध को भी हम बदल सकते हैं, परमात्मा भी सहायता करते हैं। इसलिए जीवन सार्थक करते हुए और उस तत्व को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न करने का सामर्थ्य परमात्मा सबको दे, इतना कहते हुए मेरा जो वाणी है उसी परमात्मा अथा सारा जगत का कारण, सबका अधिष्ठान जो प्रज्ञान ब्रह्म है, उसके चरण में समर्पण करता हूं। ओम शांति शांति शांति।
नारायण नारायण नारायण। हम कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आते हैं, बड़ी शांति मिलती है। आइए हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वामी जी ने प्रथम दिन हमें दो बातें कही थी जो बहुत ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात, हम सत्संग में क्यों आते हैं, सत्संग में आने का हमारा प्रयोजन क्या है। ये बात बड़ी गंभीर बात है और हम सभी सत्संगी भाई बहनों को इस पर विचार करना चाहिए कि सत्संग में आने का हमारा प्रयोजन क्या है। दूसरी बात स्वामी जी ने कही थी कि हम कुआं क्यों खोदते हैं, कुआं खोदते हैं पानी के लिए। स्वामी जी का नहीं, पानी तो पृथ्वी के अंदर है, हम केवल मिट्टी को हटाते हैं तो पानी अपने आप मिल जाएगा। यह बात बहुत गहरी है, हमें सोचना है। ज्ञान हमारे भीतर है, हमारा स्वरूप सत चित आनंद है, लेकिन माया मल विक्षेप इसका आवरण हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। आज स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही आज कि जो संसार सागर है, भव सागर है, इसे हमें पार करना है। सत्संग और ज्ञान रूपी नौका पर हम लोग बैठे हुए हैं, नौका पर बैठे हुए हैं और हमारे नाव की पतवार इन महापुरुषों के हाथ में है, इन महापुरुषों के। और हमें पूरा विश्वास है जब हमारी नाव की पतवार इन महापुरुषों के हाथ में है, इन संतों के हाथ में है, तो हम अवश्य ही भव सागर से पार हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के शिष्यों में प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण।